ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्ति में पांच अंग होते हैं जो रूप गोस्वामी समझाते हैं, 64 अंगों में से, और उसमें एक अंग है, चलो पांच बता देते हैं आपको। पहला अंग है भगवान का नाम, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे नंबर वन में। उसके बाद में भगवान के भक्तों का संग, उसके बाद में भगवान के विषय में जो शास्त्र है जैसे श्रीमद् भागवतम, ऐसे ही शास्त्रों का अध्ययन। चौथा है भगवान के मूर्ति यानी विग्रह का पूजन। तो पांचवा है भगवान के धाम में निवास। छठवा भी है तुलसी की पूजा। तो जो पांचवा चीज है ना वो आप अभी कर रहे हो, भगवान के धाम में निवास। और यहाँ पर जो आप बैठे हो ये वृंदावन धाम ही है, वृंदावन धाम का रेप्लिका नहीं है। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो आप ये बने बनाए जगह पर आ रहे हो, यहाँ पर जमुना जी बनाई है, यहाँ पर सात मंदिर बनाए हैं, यहाँ पर मदन मोहन जी फुल साइज बनाए हैं। लेकिन एक होती है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति है ना, उसका बड़े विधि होते हैं, 3 दिन तक भगवान के विग्रह में वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और दूसरा होता है धाम प्रतिष्ठा, वो भी इम्पोर्टेंट है। पूरे धाम को यहाँ प्रकट करना ये भी एक साइंस है, तो वैसा ये धाम यहाँ प्रकट हुआ। और ये पहली बार नहीं है, ये 10वां है धाम। इतिहास में पहले 9 धाम ऐसे प्रकट हो चुके हैं जहां पर वृंदावन नहीं था लेकिन वृंदावन प्रकट हो चुका। फॉर एग्जाम्पल रामकेली में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जब रहते थे, सकर मलिक और डबीर खास बन के, तो उन्होंने अपने यहाँ पर वृंदावन धाम प्रकट किया। तो प्राचीन काल से द्वारका में भगवान के होते हुए भगवान के आनंद के लिए एक वृंदावन प्रकट किया गया था समुद्र किनारे, उसकी भी बृहद भागवतामृत में कथा आती है। फिर बेल्जियम में हमारे शिवराम महाराज है, उन्होंने भी एक धाम प्रकट किया है। और हमारे शिवराम महाराज जी हैं, उन्होंने वो नव वृंदावन महिमा एक ग्रंथ लिखा है, 9 खंडे उसके, इतने बड़े बड़े 600 कहानी है उसके अंदर वृंदावन धाम की। और वो एक भावना के सर पर प्रकट किया उन्होंने, उन्होंने खाली वो बोर्ड लगा दिया उन्होंने बरसाना दिलीप होकर, और उसके विषय में पूरा ग्रंथ लिखा है कि बरसाना मतलब क्या, उसकी पूरी कहानियां पे लिखी है। तो वो कथा रूप में आप उन्होंने धाम वहां प्रकट किया, और वो कथा रूप में वहां पर आप धाम की यात्रा कर सकते हैं श्रवण के माध्यम से, सुनकर पढ़कर लिखकर। तो ये 10वां है, इसके इतिहास में पहले ऑलरेडी 9 हो चुके हैं। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि श्री वृंदावन धाम इतना महत्वपूर्ण धाम है कि सब लोग वहां पहुंच नहीं पाते, क्योंकि अमेरिका बैठा है तो वेस्ट कोस्ट में, तो उसको तो फिर पूरा प्लानिंग करके आना पड़ेगा इधर। हम भी बम्बई में ज्यादा कुछ नजदीक नहीं है, एक दिन लगता है पहुंचने के लिए, तो वहां तो जाना ही है जब समय मिलेगा तभी। लेकिन ऐसा वो एक स्थिति होनी चाहिए कि आप 1-2 घंटे में पहुंच सकते हैं और बहुत आसानी से आपको धाम मिल सकता है। तो ऐसा ये धाम है, मेरा एकदम 100% हृदय पूर्वक इस बात में पूरी निष्ठा है, विश्वास नहीं, निष्ठा। वो अचल विश्वास को निष्ठा कहते हैं, विश्वास हिल सकता है लेकिन निष्ठा नहीं हिल सकती। तो मेरा इस बात पर अचल निष्ठा है कि दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन, केवल एक ही फर्क है, वास्तविक वृंदावन में गोवर्धन रोज एक तिल के आकार से जमीन में धस रहा है, और यहाँ पर नहीं धस रहे, यहाँ पर वैसे ही है, हो सकता बढ़ जाएगा सभी आगे जाके। और भाव वही है कि आपको वृंदावन में ही आप हैं, ऐसा दिव्य भाव प्रकट हो। कृष्ण बरसाना भी बनाया है इसमें, नंदगांव में बनाया है, और आपको पता नहीं होगा शायद कि इसमें 91 प्लेसेस यहाँ पर प्रकट किए गए हैं, 91 प्लेसेस। और मेरा भी प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें कि जितने 91 प्लेसेस प्रकट किए हैं वो सारी कहानियां दिल भर के बोलना है, एक बार कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं उसके अंदर, उसको रिकॉर्ड करके आर्काइवल में डालना है। आपको जब भी दिल करे तो बरसाना के विषय में, बरसाना में बैठकर वो कथा करें, ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ के करेंगे, यहाँ पर आकर उस स्थान पर बैठकर उसकी कथा कहनी है। हो सकता है एक स्थान में 10 कथाएं होंगी तो 10 कथाएं बोलनी अलग अलग, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, हिंदी में अलग होगा, इंग्लिश में अलग होगा। तो इस समय पर मैंने बरसाना धाम का पूरा कथा समाप्त किया है, नंदगांव का बहुत सारा समाप्त किया है, और गोवर्धन में शुरुआत किया है। इसके बाद गर्मी आ गई, उसके बाद बारिश आ गई, अभी जब बारिश रुकेगी तो दोबारा हमारा मैराथन चालू हो जाएगा, सुबह और शाम दिन रात। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारा जीवन जो है ना बहुत कष्ट में रहता है बाह्य स्तर पर, मटेरियल वर्ल्ड में जब जीते ना, आए दिन संकट, समस्या, परेशानियां, कष्ट, यातना, पीड़ा, बीमारी, फैमिलियल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, इमोशनल, क्या नहीं होता है, सबका पूरा एक मेन्यू है पूरा ही जो आपको रोज दिया जाता है अलग अलग स्तर का। उससे अगर छुटकारा पाना है आपको तो कोई उपाय नहीं है उसका, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से चलती रहती है। हमने भी एक मेन्यू लाया हमारे साथ में, वही हमको दिया जा रहा है, आपको कुछ बाहर से नहीं पता चला, आपको वही मेन्यू दिया जा रहा है जो आप खुद आए हैं, उसको ही गाली दे दिया जा रहा है, बस समय पे योग्य समय पे दिया जा रहा है। भगवान भी आपके कर्मों के बीच में दखल नहीं दे सकते, नहीं चाहते हैं सब, क्योंकि जीव को तब अगर सब कुछ फ्री में मिल गया, कर्मों का डिस्काउंट भी फ्री में मिल गया, डिलीट मार दिया भगवान ने, तो आपको क्या वैल्यू रहेगी उसकी। हाँ, कुछ तो कुछ तो पता चलना चाहिए ना, तो बच्चे ने पेंसिल चुराया, किसी का मोबाइल चुराया, और आपने वापस हाथ दे तो वापस दे दिया, छोड़ दिया, कुछ कुछ उसको दिया ही नहीं पनिशमेंट, तो कभी सुधरेगा क्या वो, दोबारा कोई चोरी करेगा। तो अगर जीव का वास्तविक विकास होना है तो ये पनिशमेंट थोड़ी सी आवश्यक है, ताकि हम एक एहसास अनुभूति पर आए कि ये सही नहीं है, और ये भी अनुभूति हो कि जहाँ पर हम लोग शरीर में जी रहे हैं वो जगह भी सही नहीं है, हमारा वास्तविक घर नहीं है वो, दिस इज नॉट अवर ओरिजिनल होम, हम लोग यहाँ पर किराए के घर पे रह रहे हैं कुछ समय के लिए, वो ये घर ये है चलता फिरता घर, इसमें कुछ साल जीना है तो जाना है छोड़ के, कोई रह सकता परमानेंटली यहाँ पर, नहीं रह सकता। तो इसलिए धाम में नियमित रूप से आते जाते रहना, और धाम के विषय में सुनना, धाम के विषय में आसक्ति प्रेम निर्माण करना बहुत जरूरी है, जीवन का एक अविभाज्य अंग है वो। इसलिए रूप गोस्वामी ने 64 में से 5 में भी उसको स्थान दिया धाम निवास। वो धाम निवास परमानेंट हो सकता है, या मतलब वहां पे आपका जन्म हो सकता है, नंबर 1 वहीं के निवासी, वहीं का जन्म परमानेंट निवासी वहीं के, या आप सूरत में जन्म लेकर एक समय जीवन में वहां पर जाकर शिफ्ट हो सकते हैं, कभी उनको यही रहना है बस फुल टाइम, दूसरा टाइप के वास, या तो महीने में, वर्ष में 6 महीने में एक बार 5 दिन जाके आए, 6 दिन जाके आए, यात्रा घूम के आए, कथा सुन के सब दर्शन करके आए, जे सब स्थाने सेरी हेरी को आमी प्रणयी भक्ति संगे, प्रेमी भक्तों के संग में आप दर्शन कर रहे हैं सबका, वे धाम वास। और 14 धाम वास क्या है कि आप सूरत में रहो, मुंबई में रहो, दिल्ली रहो, हरियाणा रहो, मन से वृंदावन में रहो, मन मोर वृंदावन, हमेशा उसकी स्मृति बनी रहना चाहिए, हमेशा उसका चिंतन चलते रहना चाहिए। हाँ, उसी प्रकार से जिएंगे तो आप जहां पर भी होंगे वहीं पर आप वृंदावन में, लेकिन वो स्थिति उत्पन्न करने के लिए आपको कभी ना कभी वहां जाना पड़ेगा और जाके वो सब सुनना और करना पड़ेगा और वो सब कुछ हृदय में समाना पड़ेगा, तब आपके मन की वो चेतना बनेगी अभ्यास से, है ना। तो ऐसा ही वृंदावन धाम जो है ना, भगवान का सब विशेष धाम है। क्या क्या विशेषता है उसकी? बहुत सारे धाम है भगवान के, द्वारका भी है, जगन्नाथपुरी भी है, बद्रीनाथ भी है, श्रीरंगम भी है, अयोध्या भी है, कितने सारे, सिंगाचलम है, अहोबिलम है, आप बोलते जाओ, तिरुपति है, मदुराई है, कांचीपुरम है, भारत तो पूरा खजाना है। बाकी लोगों के जीवन में एक धाम सऊदी अरब में है, एक ही, बाकी एक जेरूसलम में है, लेकिन हमारे इतने होलसेल में किसके पास है क्या? हमारे तो कदम कदम पे धाम है और कदम कदम पे अनंत लीलाएं हैं, कहीं भी जाओ तिरुपति जाके बैठो, खत्म ही नहीं होगी लीला। इतना लीला भगवान का अनंत, हरी हरी अनंत, हरी कथा अनंत। तो विशेषता क्या है उसकी वृंदावन की? कि वृंदावन धाम में भगवान भगवान के रूप में नहीं आते, भगवान के अपने पोजीशन को छोड़ के आते, क्योंकि भी उनको भी स्पेस चाहिए ना अपना। हर जगह पे वो आरती पूजा श्लोक पुरुष सूक्त ये वो सब चल रहा है उनका, कहीं अदर को सर स्पेस ही नहीं इधर। तो भाई मैं आई कैन लिव एज माई सेल्फ, है ना। सचिन तेंदुलकर समझो, उसको एक सॉफ्ट लेना है, ले सकता है वो हमारे जैसा, किसी भी दुकान में उसके ले सकता है, ये नहीं हो लाल वाला दिखाओ, यानी वो ग्रीन वाला दिखाओ, यानी वो बोगरे वाला दिखाओ, ये ठीक नहीं है, लंबा वाला दिखाओ, छोटा वाला दिखाओ, अच्छे ब्रांड का दिखाओ, ऐसे सब कर सकते हैं वो नहीं। उनके लिए ना उनको उस देश में जाना पड़ेगा जिसमें कोई क्रिकेट नहीं खेलता, पता ही नहीं क्रिकेट क्या होता है, तो स्टार को कैसा पहचानेंगे? तो वहां जाके रहेंगे तो फिर वो अपना जो लेना है वो सब ले सकते हैं, जूता ले सकते हैं, सॉक्स ले सकते हैं, बनियन ले सकते हैं, शर्ट ले सकते हैं, तो वहां पर वो ऐसा फ्रीली जी सकते हैं क्योंकि उनको कोई जानता नहीं होगा। उस तरह से भगवान अभी द्वारका जाएंगे तो द्वारका नाथ है, नीचे जाएंगे तो रंगनाथ है, फिर जाएंगे तो जगन्नाथ है, वो जाएंगे तो बद्रीनाथ है, सब जगह उनका अपना एक पोजिशन फिट किया हुआ है। तो वृंदावन में आते ना उनकी माया है, उसका नाम है जगन मोहिनी माया, भगवान की अनंत माया शक्ति है उसमें, एक जगन मोहिनी माया। वो क्या करती है? वो भक्तों के दिमाग से वो ज्ञान छीन लेती है कि ये भगवान है, तो क्या बचता है? माइनस दैट ज्ञान, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये तो मेरा कॉमन जो भी रिलेशन आपका भाई है बहन है जो भी कुछ है, सो बट माइनस गॉड, ही इज नॉट गॉड। तो वृंदावन में स्थिति ऐसी है कि वहां पर जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति का ये साक्षात्कार भगवान छीन लेते हैं, और बाद में जन्म लेता है वो कोई जानता नहीं कि ये भगवान है। अगर जानते होते तो उनके सर पे चढ़ते क्या? वो माता उनको बांधने का हिम्मत करती क्या? कोई मुंह से छीन के कुछ ले रहा है खा रहा है, उनका टिफिन छीन रहा है, उनके बाल खींच रहा है, उनके मुरली चुरा के ले जा रहा है, कंधे पे चढ़ रहा है उनको, हरा हार गए तो उनको कंधे पे चढ़ा के कृष्ण को राउंड देना है जीते हुए व्यक्ति को, सोच सकते आप? अगर उनको ज्ञान होता कि ये भगवान है तो सब उनका पूजन करते, आरती करते उनकी। मैया को पता चला, अरे मुंह में ब्रह्मांड देखा तो पता चला, अरे तो भगवान है ये, बाप रे मैंने कितनी बार डांटा उसको, आज तक कितना पनिशमेंट दिया, कितना सजा दिया उसको मैंने, क्या क्या किया, कुछ तुरंत वो हाथ जोड़ के वो प्रार्थना करने लगी। भगवान को लगे ये सही नहीं है, ये मेरा पर्पज को फेल कर रहा है, तो क्या किया? मुंह बंद कर दिया, एक स्माइल दिया, और स्माइल दिया तो सब भूल गए मुंह में क्या दिखा था, गोद में लगा दिया, स्तनपान कराया। अभी सब ब्रह्मांड का मालिक है वो, है ना, क्या नहीं है उनका बताओ। वो कहते हैं मैं सारे ब्रह्मांडों का मालिक हूं, लेकिन मैं चुरा कर माखन खाने के लिए इधर आया हूं, छाछ और माखन खाने के लिए, चुरा कर खाने के लिए मैं इधर आया हूं। ये उनकी स्थिति है। मैया यहां तक माखन खिला रही है, पद्मगंधा माखन, जिस माखन को कमल की खुशबू आती है, और हमारा वाला कमल नहीं, इसको सेंट मारने पर कुछ भी नहीं आएगी, वो कमल जो वृंदावन धाम का है, वो कमल की खुशबू संपृक्त रूप में सैचुरेटेड स्मेल जो है ना वो मक्खन से आ रहा है, वो मक्खन आकंठ उसको खिलाती है, और उसके बाद भी आगे चोरी करके खाते हैं क्योंकि उनको खाना है, इसलिए तो आए। मतलब एक चोर भी खिलाने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग कहते हैं कितना लंपट है, रात को लड़कियों के साथ नाचता है, वो दूसरों की बीवियां हैं, कितने सारे लांछन लगाते हैं वो, लेकिन वो सब कुछ इधर कैर हो गया। ऐसा ये स्थान है बताओ, और एक डिफरेंस है उसके अंदर। वैकुंठ में जाएंगे ना, वैकुंठ में या गोलोक धाम में जाएंगे ना, वहां पर कोई राक्षस नहीं है, कोई पुतना नहीं है, कोई शक्रासुर नहीं है, कोई तृणावर्त तो कोई नहीं उधर, सब लोग फ्रेंड्स हैं, और लड़ते भी हैं तो फ्रेंडली भी लड़ते हैं। जैसे पापा और बच्चा जब कुश्ती खेलता है तो पापा हार जाता है, हाँ है ना, बच्चे को खुश करने के लिए पापा चितपट हो जाता है, आसमान दिखाते हैं उसे। लेकिन वो जो लड़ने का जो है ना, क्या कहते हैं उसको, जिजी विषा कह सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं, तो अंदर से जो है ना वो जलन, लड़ना है मुझे उधर नहीं होता है, तो उसमें से कोई चुनते हैं किसी के, तू जा भाई कंस बन जा, तो रावण बन जा के नीचे जाते हैं और दिल खोल के लड़ते हैं। तो वीर रस भी जो है ना वो उधर नहीं है, वो खाली इधर के वृंदावन में होता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हैं। और एक डिफरेंस है कि जितने धाम भगवान के हैं वो सारे धाम में किधर भी भगवान की चरण की रज नहीं मिलती है। क्यों बताइए, क्यों बताइए, ना द्वारका में चरण राज मिलती है, ना जगन्नाथपुरी में मिलती है, ना बद्रीनाथ में मिलती है, ना श्रीरंगम में मिलती है, ना अयोध्या में मिलती है, ना तिरुपति में मिलती है, ना गांधीपुरम में मिलती है, कितने अनंत प्रकार के विष्णु में कौन से। अरे चप्पल तो बात की बात है, जहां चलते वहां पर मखमल पर बिछा देते हैं पहले, सबसे पहले, उसके बाद रत्न जड़ित चप्पल आती है, उसके बाद रथ आता है, तो एक बार तो मखमल हो गया, उसके बाद रथ हो गया, उसके बाद चप्पल भी होगी। कहां चरण के तलों का जमीन पे स्पर्श हो रहा है बताओ,
वहां पे वृंदावन में गाय है तो उनको चप्पल नहीं है तो,
तो बता रहा हूं मैं आपको ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल वृंदावन में वो नंगे पैर आने का निर्णय लिया उन्होंने, वहां पर वो जूता नहीं पहनते, उसको प्रभु जी बता रहे हैं। वैसे कई कहानियां हैं, एक कारण यह है कि मेरी गायों को जब जूता चप्पल नहीं है तो मैं क्यों पहनूं। ब्रजवासी को ऐसे ही रहना चाहिए जैसे गायों को रखा जाता है, ऐसे भगवान ने स्वयं अपने मां को उत्तर दिया, जैसे मैं हूं ऐसे जैसे गाय है वैसे मुझे रहना है। तो गाय चप्पल नहीं पहनती है, छतरी नहीं लेती है, तो मैं भी नहीं लूंगा। तो एक ही जगह है वृंदावन जहां पर भगवान के सुंदर लाल लाल दलों का स्पर्श भूमि को हो रहा है, और वहां पर चरण रज नाम की वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी एक ही ऐसी जगह है। लेकिन दुनिया में सब लोग जितने भी हैं इस विश्व में, 14 भुवन उपस्थित है नीचे सर, जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी देवता है, वैकुंठवासी जितने भी सब लोग हैं, वो सब लोग पृथ्वी पर के वृंदावन में आते हैं उनका चरण जल चरण रज प्राप्त करने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भी कहीं जाते हैं खुद के लिए चरण रज लेने के लिए, वो कहां जाते हैं, सबके लिए उनकी चरण रज प्राप्त करने योग्य है, सब लोग कलम कलम के आते हैं और वहां के चरण रज देते हैं, उनके लिए भी कुछ चरण रज उनके लिए भी खुद के लिए भी चाहिए। जैसे सब लोग भजन कर रहे हैं, भगवान भी भजन करते हैं, पता है आपको वो कौन है जिसका भगवान भजन करते हैं, भक्तगण। वो भक्तों के अंदर ऐसा कौन है जिसका वो भजन करते हैं, राधा रानी। हम लोग सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र श्रीराम जय राम जय राम जो भी कुछ है करते हैं, कोई ओम नमः शिवाय बोलता है, कोई ओम नमो नारायण बोलता है, कोई श्री राम जय राम जय भगवान के अनंत मंत्र है नाम है, भगवान भी भजन करते हैं। कालिंदी वन कुंज तंड मतिरे, कालिंदी तटे कुंज मंदिर अंदर क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं, अपने हृदय के आंगन में राधा रानी के दो चरणों पर ध्यान करते हैं और मुख से राधे 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 बोलते हैं, ये उनका भजन है। और कैसा भजन करते हैं, हमारे जैसा नहीं, जब कर रहे हैं चार माला हो गई, मम्मी क्या ब्रेकफास्ट बना रही हो आज, क्या बनेगा खमन ढोकला बनेगा कि क्या बनेगा, हमारे मन में हमारा जब ऐसा होता है, भगवान सब कुछ भूल कर अपने आप को भुला कर अपने आप को उसमें बेच कर भगवान राधा रानी का ध्यान करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है देखो, परिणाम ये होता है कि उनका रंग जो है ना बदल जाता है, सांवला रंग गोल्डन हो जाता है, वो राधामय हो जाते हैं, मतलब राधा ही हो जाते हैं, ऐसा भजन है वो, आधा भजन नहीं है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकता, मुख से और हृदय के अंदर उनके चरणों का चिंतन है। तो उन चरणों की रज प्राप्त करने के लिए वो बरसाना जाते हैं, जिनके चरणों के रज पूरा विश्व चाहता है, पूरा ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड के लोग चाहते हैं, वो जाते हैं बरसाना में, क्योंकि वहां पर राधा रानी भी बिना जूते के विहार कर रही है, उनके भी तलुओं का स्पर्श वहां के जमीन को हो रहा है, तो वहां पर भगवान जाकर उसका तिलक करते हैं। और केवल तिलक नहीं करते, उसमें लोटपोट हो जाते हैं, थोड़ी देर लोटपोट, रोलिंग इन द डस्ट। कभी किया आपने रोलिंग? हमने वृंदावन में कई बार किया, कई बार। एक बार 1986 में हम पहली बार वृंदावन में आकर में गए थे, तो परिक्रमा रास्ता में चल रहे थे, तो परिक्रमा रास्ता में उस समय ना बहुत ही मुलायम टैल्कम और जैसी रज हुआ करती थी, अभी तो पूरा चेंज हो गया है, तो कुछ ऐसी हैवी बातें चल रही थी, सब समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल। मदन मंजी के मंदिर में पास में थे, तो महाराज सुनते हुए जा रहे थे, और कुछ जोड़ी एकदम से जोर से बात कर रहे, ऐसा वैसा। महाराज ने कहा, आप लोग जानते हो इस समय आप ब्रज रज में चल रहे हो, आप चाहो तो उसमें आप रोल हो सकते हो, और आप यहाँ वहां की बातें कर रहे हो। चलो चुप हो गए, और सब लोग तुरंत रोल हो गए उसके अंदर मेन रोड पे, और महाराज भी उसके अंदर लोट पोट हो, ऐसी रज थी उस समय। अभी क्या बोल रहे हैं? तो ऐसी कई जगह अभी भी वृंदावन में है जहां पर वास्तविक रज उपलब्ध है। तो वैसे लोटपोट कृष्ण भगवान बरसाने में होते हैं, एक तो चरण स्पर्श और धूल स्पर्श कर लिया, लोटपोट हो गए, फिर जब वो रूठती है तो क्या करते हैं, उनके चरणों में अपना मोर मुकुट रख देते हैं। उसका मतलब पता है आपको क्या होता है? आपका जो सम्मान की स्थिति है, जो सम्मान का प्रतीक है, उसको उठाकर आप किसी के चरणों में रख रहे हो, मतलब यू आर सरेंडरिंग योरसेल्फ, तभी भी नहीं मानती। फिर क्या करते हैं, जिस सर पर वो मोर पंख लगाया गया था वो सर ही उनके चरणों पर लगाती, फिर भी नहीं मानती। फिर क्या करते हैं, फिर वो रोते हैं और अपने अश्रुओं से उनके चरण को धोते हैं, फिर भी नहीं मानती। आप सोच सकते हैं कितने राधा रानी को कितना सम्मान देते हैं वो, कितना महत्व देते हैं, उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो। अभी ऐसा कोई इतना ब्रह्मांड का अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर भगवान गोलोकेश्वर, क्या क्या उपमा दे उनको, वो इनके चरणों में रगड़ रहे अपने आप, और जब फिर भी नहीं मानते हैं तो मोर बंद आते हैं और नाच दिखाते हैं, तब जाकर वो भूल जाती है क्रोध और ज्वाइन करते नाच करने में उनके, और नाच करते करते बहुत टाइम नाच करने के बाद में जब भी एक पोज देते हैं ऐसा नजदीक वाला, तब पता चलता है ये तो कृष्ण है। इतना सारा ड्रामा खड़ा कर दिया उनको रुझाने के लिए, उनको बहलाने के लिए, उनका रूठना मनाने के लिए, तो क्या पोजीशन होगी राधा रानी, सोचो कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि तो अगर आप वो विष्णु का अगर आप महिमा सुनेंगे ना, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ऐसे कितनी स्तुतियां हैं उनके विषय में। वो विष्णु भगवान कृष्ण बनकर दो भुजा वाले बनकर पृथ्वी पर आए हैं प्रेम की लीला को अनुभव करने के लिए, और ये अत्यंत अति गुह्यतम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट पास्ट टाइम जो है ना, ये उधर मनाने को आ रहे हैं। और वो बरसाना ऐसा जगह है क्योंकि राधा रानी का घर है, वो होम टाउन है, तो सबसे उनको प्रिय है, और उस होम टाउन में उनको राधा रानी के साथ में अति अति उत्कट लीला करना है प्रेम का, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कोई शक्टासुर आ रहा है बीच में, कोई पुतना आ रही है, कोई अरिष्टासुर बीच में आ रहा है, खेलते खेलते सडनली कोई घोड़ा आ गया बीच में, कोई गधा आ गया बीच में, कोई फिर उसको मारो, उसका भयंकर युद्ध करो, उसको पटको, उसको हवा में घुमाओ, ये करो वो करो, कितना काम है उसके अंदर, लेकिन ऐसा डिस्टर्बेंस उसमें नहीं हो सकता है जो उनको वहां करना है। तो क्या किया उन्होंने, कंस का दूत आया पहले, तो उसको पत्थर बना दिया। कौन है वो? हाउ बिलाऊ, नंदगांव में रहते हैं, पत्थर अभी भी बने हुए हैं। उसको यशोदा मैया ने यूज किया उसको डांटने के लिए, डराने के लिए, देखो हवा आ रहा है, तो मतलब भागते थे। फिर कंस खुद आया, इधर गए लोग गोकुल छोड़कर, मैं तो राक्षस भेज रहा हूँ मारने के लिए, कोई है ही नहीं उधर, तो वे इनको भेजा तो ये वापस लौट के नहीं आए। सबका ना वन वे टिकट ही था, टिकट था रिटर्न वाला, लेकिन सबका बेकार, वे वापस आए नहीं कि यहाँ से निकले मथुरा से तो मौत के घाट ही उतारे गए वृंदावन धाम में। हाँ, यत गत्वा निमंत्रित, वहां गया वो, लौट के वापस नहीं आया, चला गया। तो फिर वो खुद गया। और सुनिए भाई और बहनों, जैसे ही बरसाना के सीमा में कंस ने काले घोड़े पर बैठकर प्रवेश किया ना, तो काला घोड़ा घोड़ी बन गया और कंस गोपी बन गया, स्त्री बन गया, कन्या बन गया। सोचो, भगवान के ऊपर वो आक्रमण करता था राक्षसों को भेजकर, राजा रानी ने कुछ नहीं किया, राजा रानी के धाम में प्रवेश किया, उधर ही कन्या हो गया वो। और वो चक्रवर्ती सम्राट था, उसको इतना बुरा लगा होगा, देखो वापस जाएगा तो लोग उधर क्या बोलेंगे कि महाराज हमारे क्या हो गया तुमको, तो उधर एम्बेरसमेंट है, यू कैन गो बैक। और यहां पर औरतें बहुत स्मार्ट होती है, वो देखते समझ गए हमारे महाराज तो कन्या हो गए, तालियां पीटकर हंसने लगे, रोने लगा वो बेचारा, कुछ भी करो बचाओ मुझे। 6 महीने कंडीले हुआए उससे, तब तक राजा रानी उंगली उठाकर उसको डांटा, मैं दोबारा आओगे ना परमानेंट कन्या बना दूंगी, इधर भी स्नान करो इस कुंड में, भागो यहां से। तो वो उसका घोड़ा भी उतरा पानी में, वो भी घोड़ी था, वो घोड़ा बन गया, ये कंसनी गोपी मुटल्ली गोपी थी वो भी वापस कंस हो गया, गीले कपड़े में घोड़े में बैठकर जो भागा ना, पीछे मुड़के भी देखा नहीं। क्यों? अगर पीछे मुड़ के देखा और स्वामी जी का माइंड चेंज हो गया तो, इसलिए मथुरा तक भागा, वापस लौट के नहीं आया, ना कोई आदमी उसका आया, प्रॉमिस करके गया था ना इधर नहीं भेजूंगा, क्योंकि जिसको भेजेगा वापस आएगा सब लोग कन्या बनेंगे तो कैसे चलेगा। क्यों क्यों ऐसा सब लीला किया उन्होंने? क्योंकि उनको वो उत्कट लीला वहां पर करना था। अभी वो बताने का समय बहुत कम है, लेकिन बहुत सारी लीलाएं बरसाने में ऐसी है ना कि आपको सुनकर पता चलेगा कि इसमें बाधा नहीं आ सकती, इसमें कोई कंस या कोई अरिष्टासुर नहीं आ सकता, ऐसे लीलाएं हैं, बहुत उत्कट इंटीमेट एकदम, बहुत और प्राइवेट सीक्रेट और इंटीमेट। भगवान का भेष बदल के आना, श्यामा सखी बन के आना, चूड़ी बेचने वाली बनकर आना, कभी ज्योतिषी बनकर आना, कोई ब्रह्मचारी बनकर आना, कोई बाबा बनकर आना, कभी सिद्ध बाबा बनकर आना, कभी मेहंदी वाली बनकर आना, कभी फूल बेचने वाली बनकर आना, कभी झाड़ू वाली बनकर आना, कोई बनी ढाड़ी न कोई बनी माली न, कभी फूल की माला वाली, कभी झाड़ू वाली, क्या क्या भेष बदल के मिलने को आते हैं। उधर कैसा घोड़ा आ सकता है? तो ये है बरसाना धाम, इसकी महिमा अगाध है। कृष्ण भी नंदगांव में अधिक समय रह नहीं सकते हैं, उनको उनका जी लगता ही नहीं बरसाने नंदगांव में, बार बार बहाने बहाने बनाकर भेष बदल बदल कर, उसको कहते हैं छद्म लीला, छद्म यानी काइंड ऑफ चीटिंग, मतलब छलिया, मतलब छलिया, वो छलिया लीला करते हैं। उससे भरा हुआ है पूरा बरसाना धाम, जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर वो छदम उनकी छद्म लीला चलती रहती। अरे क्या बावड़े है क्यों, क्या मतलब पागल होकर खड़ा है इधर, क्या कर रहे हो इधर तुम? नहीं नहीं वो रस्ते पे कंकड़ बेच रहा हूँ, मतलब कंकड़ होता है रस्ते में वो निकल रहा हूँ, लेकिन नजर ऐसे उधर ही है, आएगी अभी आएगी, दर्शन होगा। और सब बताने वाले हंस रहे हैं, बावड़ो मतलब पता है आपको, मतलब बावरा मतलब थोड़ा सा चटक गया उसका, थोड़ा सा पागल आदमी, और खास करके अगर लड़की के पीछे कोई पागल है तो उसको ज्यादा बावड़ा कहते हैं, तो ये बावड़ो कर रहा है बावड़ो वो बावड़ो बनने को भी तैयार है, हंसी मजाक का विषय बनने को भी तैयार है उनके लिए, बोलो। ऐसा ही बरसाना था, उसकी लीलाएं अनंत है, क्योंकि भगवान उसके लिए खुद अपने आप को बेच चुके। और कहते हैं कि एक गोपियों मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास वो नहीं है जो मैं आपको रिटर्न में दे सकता, इसलिए न पा रहे हम आपके प्रेम का, मैं कुछ क्या कहते हैं रिवॉर्ड या रिटर्न कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास शक्ति नहीं, आपका प्रेम इतना अगाध है कि मुझ में वो शक्ति नहीं कि आपका प्रेम के लिए मैं कुछ रिस्पांस दे दूं। तो आप अपने प्रेम में ही खुश रहिए, आपका प्रेम जो है ना वही आपका रिवॉर्ड है, मेरे पास कुछ देने को है नहीं। ऐसे भगवान उन गोपियों के सामने असहाय होकर बरसाना में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और बरसाना में हमेशा सखी बनकर ही प्रवेश करते हैं। आपने कितने लोगों ने बरसाना दर्शन किया है? ये जो फोटो है ना यहाँ का, वो भी मैंने लाया हुआ है, उसको भी आप देखिए, यहाँ पर नहीं बरसाने में, तो वो फोटो में आप अभी भी जाके गौर से देख सकते हो, कृष्ण भगवान चुनरी ओढ़े हुए हैं, एक लंबी चुनरी है जो यहां से लेकर ऐसी पूरे जा रही है, और उसके बीच में राधा रानी है, उसके ऊपर चुंदरी ओढ़ी हुई, तो उधर सखी बनकर ही वो रहते हैं, अपने मूल रूप में भी रहते नहीं उधर राधा रानी के प्रेम से, क्योंकि राधा रानी के धाम में राधा रानी का राज्य है, तो वहीं पर वो रहते हैं सखी बनकर। और राधा रानी ने उनको विनती किया था कि आप मेरे घर जमाई बनकर रहो, इसलिए वो बरसाने में रहते हैं महल में, ऋषभानु बाबा के घर जमाई बनकर। ये प्रेम लीला है बरसाने की। तो वहां पर कौन जन्म लेता है बरसाने में? वही जन्म लेता है जो राधा रानी का अति प्रिय जीव है, जो राधा रानी के मर्जी का जीव है, मतलब जिसकी कृपा उस पर हो चुकी है, जिसको वो बहुत चाहती है, जिसमें अनंत जन्मों में ऐसा सेवा किया है वैष्णवों का, और जो भी कुछ भजन किया है वो उसके योग्य है कि राधा रानी की छत्र छाया में जन्म ले। और कैसे रहते हैं वो? देखो भाई, हम लोग सब शहर के लोग हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। हम सबसे ज्यादा किसको मूल्य देते हैं, सबसे ज्यादा आदर किसका करते हैं बताओ? इसके पास पैसा है ना, चाहे वो काला कलूटा हो, लुच्चा हो, शराबी हो, एकदम एकदम व्यभिचारी व्यक्ति हो, फिर पैसा हो तो हम लोग सलाम करते हैं, तो वो हमको गर्व देता है। और क्या गर्व देता है आपको? हमारा सौंदर्य, हमारा रूप, कि मैं इतना सुंदर हूँ, वो गर्व देता है। और क्या हमको गर्व देता है बताइए? विद्या, मतलब एजुकेशन, 10 डिग्री है, 50 डिग्री है, डॉक्टर है या MD है, PhD है, जो भी कुछ है, वो हमारा कितने भी ग्रुप होगा हाँ, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा। और क्या है? जन्म, अरे जन्मपुर कितना, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम तो सनोड़िया ब्राह्मण हो, मैं तो बोर्ड सावस ब्राह्मण हूँ, किसे बहुत सारे ब्राह्मण के अंदर भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो एक जन्म भी हमको ना, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति यानी ज्ञान, और श्री यानी सौंदर्य, और क्या है, बल। बल कई प्रकार का होता है, एक बल होता है शरीर का, एक बल होता है मन का, एक बल होता है अधिकार का। यहाँ से एक फोन किया तो 100 लोग आ गए, एक फोन किया तो सब लोग आ गए, इधर सब गेट खोल दिया आपके लिए, नो बैंडमेंट कुछ नहीं, एक फोन किया, पावर है ना, इन्फ्लुएंस, पावर, ऐसे बहुत सारी चीजें जिससे हमको गर्व होता है, प्राइड निर्माण कर सकता है। तो राधा रानी उनको ऐसा रखती है कि इनमें से कोई भी चीज उनके पास नहीं, ना धन है, ना सुंदर रूप है, ना एजुकेशन है, ना कोई, लगता है गंवार लोग है बहुत गांव के, और ना कोई पोजीशन है, ना कोई प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ है नहीं ऐसा कुछ, ऐसे उनको रखती है हमेशा, ताकि उनको गर्व ना हो किस चीज़ का, और उनका हृदय में जो अंदर के अंदर कोने में छुपा हुआ प्रेम है वो बना रहे, उसकी वृद्धि होती रहे, ऐसा उनको रखते हैं। तो बाहर से वो लोग बहुत गरीब दिखते हैं, बहुत कुरूप दिखते हैं, बहुत अनाड़ी दिखते हैं, बहुत ऐसे वैसे दिखते हैं, लेकिन वो राधा रानी के सबसे सबसे प्रिय जीव है, वो मोस्ट फेवरेट पीपल, क्योंकि वो उनका आखिरी जन्म होता है, उसके बाद वो सीधा गोलोक धाम में प्रवेश करते, ऐसे विशेष जीव है ब्रजवासी लोग। ब्रजवासी मेरे सदा वल्लभ प्राण इन्हें ना पिसारू, मतलब मैं उनको भूल नहीं सकता, ऐसा उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी को कहा उन्होंने कि उद्धव ये जो ब्रजवासी है ना, इनको मैं भूल नहीं सकता, किसी भी कीमत पर मैं भूल नहीं सकता। वो है नंद बाबा की आन, मुझे पिताजी की मैं कसम खाता हूँ कि मैं ब्रजवासी को भूल नहीं सकता कभी, उनका मैं कभी प्रेम का कर्ज चुका नहीं सकता। तो गोपियां भी कहती है, अरे उद्धव मन न भय 10-20, 101 तो था वो ले गया, और कौन से मन की बात कर रहे हो तुम, इसको कंट्रोल करो बोल रहे हो, उसको शांत रखो, उसको योगा करो, उसको ये करो, उसको किस मन की बात कर रहे हो आप, किस मन को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हो, एक मन ही था, एक ही, वो ले गया, उसके पास है वो, यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे करेगी, उसके मन तो उसके पास। ये भी गोपियां ऐसी विचित्र थी, उद्धव जी को क्लीन बोल्ड कर दिया उन्होंने, उद्धव जी क्या क्या सोच के आए थे, इनको देखकर पूरे हैरान हो गए, वो सारा ज्ञानवान, सब योग का ज्ञान था, सभी ध्यान का ज्ञान था, मन नियंत्रण का ज्ञान था, नियम निग्रह सब कुछ का उसके पास ज्ञान था, बृहस्पति का शिष्य था वो, सब कुछ भूल गया, वो कंफ्यूज हो गया पूरा, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो कृष्ण कहते हैं ये सिखाने के लिए तुमको मैंने गोपियों की पाठशाला में भेजा, दिस इज योर हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अपने द्वारका में लेके जो भी कुछ ग्रेजुएशन किया ना, मैं आपको वृंदावन के गोपियों की पाठशाला में भेजता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक प्रेम क्या होता है, साथ में रहने से नहीं होता है। उदो सुदो है वो, मतलब सब ज्ञान का घमंड खत्म हो गया उसका, एक जगह है ज्ञान गुदड़ी वृंदावन में, वो पता है गुदड़ी क्या होता है, पता है आपको? आप लोगों को पता होना चाहिए गुड़ी गुदड़ी क्या होता है। वो ना पुराने जमाने में औरतें बहुत मतलब बहुत ही कंजूस नहीं कहते उसको, बहुत वेरी इंटेलिजेंट, कोई साड़ी वाड़ी पुरानी हो गई ना, सब इकट्ठा करेंगे, सबको सिला देंगे उसको, तो क्या बनेगी? गुदड़ी। ओढ़ने के लिए बहुत अच्छी नरम नरम होती है वो, आपको माँ का प्यार का अनुभव होगा उसके सोएंगे तो। बहुत साड़ियाँ ऐसी नरम नरम साड़ियाँ बहुत इकट्ठा करके उसको सिलाती हैं, बॉर्डर बनाती हैं, वो कहते हैं गुदड़ी। तो कहते हैं कि उद्धव जी गुदड़ी हो गए, मतलब कहीं के न रह गए, क्या था एक दिन साड़ी आज बन गया क्या ओढ़ने का सामान। तो एक ऐसा ज्ञान गुदड़ी कहते हैं उसको, उनका ज्ञान जो है गुदड़ी बन गया, चिंदी बन गया, मतलब एक दूसरे से उनका ज्ञान जो था ना इतना घमंड था उनको, वो ज्ञान चिंदी बन गया। वो जगह है वृंदावन में जब उन्होंने प्रवेश किया। तो ऐसे ही ब्रजवासी, खास करके बरसाने के ब्रजवासी, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, अभी क्या बताऊं, 30 साल के अंदर ऐसे ऐसे ब्रजवासी को देखा है। हम लोग ऐसा लगेगा क्या भक्ति करते हैं हम लोग इतना गर्व है, हम लोग चाय भी नहीं पीते, पता है आपको, चाय भी छोड़ते हैं। तो वो मुझे इतने गुजरात लोग मिलते हैं ना, उनके प्रभु जी ने चाय भी छोड़ा है, मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट इन लाइफ, चाय छोड़ा है, तो हम लोग को अपनी कितनी अपना गर्व है कि मैं 16 माला करता हूँ रोज, मेरी दीक्षा भी हो चुकी है, पता है आपको, इतने साल पहले मांस वांस सब छोड़ दिया, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, ना खाना भी हमारा ये, हम लोग सुबह उठ के जप करते हैं, इतना करने के बाद भी हम लोग ना एक बिंदु भी नहीं है ब्रजवासियों के सामने। देखो बरसाना कैंप लगाते ना हम लोग बरसाने में, तो हम लोग रात को राउंड ले लेते, राउंड कि कोई भाई ऑपरेशन हो गया है तो किसी को कष्ट तो नहीं है, तो चाहिए वगैरह दे, तो एक राउंड लेते, हमारा एक राउंड का सिस्टम था। लेकिन हम लोग रात को 1 बजे ना राउंड लेने गए, और ठंड का मौसम था ना, हमेशा ठंड में ही मौसम कैंप होता है ना, तो सारे को रजाई ओढ़ के सब लोग सो रहे हैं, बड़ी मोटी रजाई और लाइट भी डिम करके सो रहे सब लोग। और हमारे डॉक्टर वगैरह बैठे उधर, नर्स वगैरह, तो बोला क्या है, ठीक है सब लोग, अभी फिर भी राधे राधे राधे, ऐसा लग रहा है कि दर्द में कोई पुकार रहा है, मतलब आंखों में दर्द हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है, सर दुख रहा है, ऐसे ही आवाज आ रही है। तो हम लोग गए वो आवाज की तरफ, और आवाज की तरफ देखा तो वो रजाई उठाया ना, तो वो ब्रजवासी एकदम गहरी नींद में सो रहा है, और राधे राधे। दूसरे के पास गए, वो भी गहरी नींद सो रहा है। तीसरी मैया के पास गए, वो भी गहरी नींद सो रही है, एकदम डीप स्लीप में है, और इतनी जोर से राधे पुकार है, तो उधर बिस्तर पे आवाज आ रही है। तब एकदम क्लीन बोल्ड हो गया मैं, एकदम व्हाट इज द डिवोशन, अरे हम लोग जगते हुए जॉब करते सो जाते हैं, व्हेन वी आर सपोज टू बी अवेक, सुबह के समय रात को सो के उठे हुए हैं, स्नान वान करके फ्रेश हो गए हैं, उसका दूध भी पी चुके होंगे, और जब करने बैठे हैं और उसमें हम सो जाते हैं, और एक सोते हुए जब करते इन स्लीप, कितना कॉन्ट्रास्ट है देखो। एक है जब में जगना, एक है जब में सोना, एक है सोते हुए सोना, और एक है सोते हुए जब करना। इस बोले सुपरलेटिव स्टेज, हाँ ये हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे कई उदाहरण है, कई स्टोरीज है ऐसे, तब समझ में आता है कि ये हम लोग ना कितना गर्व करते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इनका ऑपरेशन करता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, 30 साल से कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारी बातें ऐसे गर्व करने के लिए, लेकिन इनको देखेंगे ना लगेगा हम लोग कुछ भी नहीं है, कर रहे उनका आंखों का ऑपरेशन, हमारा जो अज्ञान का कैटरेक्ट है ना, कैटरेक्ट मतलब मोतीबिंद जो हमारे अज्ञान का है ना, वो निकल रहा है उसके से, उनको बाह्य दृष्टि मिल रही है, उनको अंतर दृष्टि प्राप्त हो रही है, उनका ऑपरेशन करके हम अपने आप का हृदय का जो अंधकार है उसको मिटा रहे हैं। एक बार ऐसे हम जा रहे थे बाहर से मंगल आरती के लिए, थोड़ा लेट में जा रहे थे दर्शन आरती के लिए, तो एक पहचान की ब्रजवासी भैया जो है ना, वो चाहे एक बैग लेके अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए भाग रही है, उतने में हमारे डॉक्टर ने उनको मिली, अरे भैया कैसी हो, अच्छा डॉक्टर ने कभी आए, आप बहुत दिन के बाद आए, अरे देख रही, अरे मैं तो अभी घर पर नहीं हूँ, क्या क्या दूँ आपको, तो एकदम ऐसे एकदम शी वॉज एक्साइटेड कि उनको कुछ देना है, माता जी को डॉक्टर को देना है कुछ, था उसके पास अपने बच्चे का टिफिन दे दिया उसको, तो डॉक्टर ने बोली अरे मैया बच्चे का टिफिन है वो, मैं तो आऊंगी घर पे आपके रोटी खाने के लिए, नहीं नहीं वो जब आना तब आएंगे, अभी तो आप बस कुछ देना चाहिए ना, बोले बच्चे के लिए फिर नहीं नहीं वो उसके लिए रोटी बना के दोबारा स्कूल लेके जाऊंगी, बीच वाले समय में देखे आऊंगी, लेकिन तुम मुझे दोबारा नहीं मिलोगी, अपने बच्चे की रोटी छीन के कौन दे सकता है? एक विधवा से दे सकती है, अब कोई नहीं कर सकता। इतना प्रेम है, कुछ नहीं उनके पास, लेकिन इतना हृदय है ना। आज भी आप, मैं बोलता हूँ, मुझे वो बहुत शौक है वृंदावन में ना, बरसाने में वृंदावन में दूर ब्रज के गांव में जाकर भिक्षा करना मेरा एक शौक है। मैं जाके भैया भिक्षा दो तो आपको किसी, हाँ अरे आपको क्या चाहिए, ऐसे मैं घुस जाता हूँ किसी भी घर में, मतलब भैया कुछ खिलाओगे? हाँ बैठो बैठो बैठो, तुरंत ठक 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 करके हाथ की रोटी और सब्जी और पेट भर के खिलाएंगे, मुझे छाछ देंगे, मीठा लोगे कि नमकीन लोगे वो भी छाछ 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 करके बना के देंगे आपको। कोई टैबू नहीं, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, चोर हो, लुटेरे हो, डप्पू हो, क्या पता नहीं इनको, लेकिन बड़ा प्रेम से आपको खिलाएंगे। आज भी जाओ, क्योंकि ना एक होता है धन और एक होता है दानत। धन से बड़ा दानत है, दातृत्व कहते हैं उसको, मतलब देने की प्रवृत्ति है ना वो, उसके लिए धन होने की आवश्यकता नहीं होती है। कि धन होगा तो आप दानी बन सकते हो, ऐसा नहीं है। दानी एक मूलभूत प्रवृत्ति है, धन तो बाद में आता है उसके, जो आप दान देते हो उस प्रवृत्ति की वजह से। और ये दातृत्व जो है ना, दानी प्रवृत्ति, ये ब्रजवासियों के हृदय में ऐसा खचा खच भरा हुआ है, उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आपको कुछ ना कुछ देंगे वो। इसलिए कृष्ण उनके चरणों में शरणागत है। न पा रहे हम क्यों बोल रहे हैं कि आप जो दे रहे हो मैं आपके लिए रिटर्न नहीं कर सकता, वो मेरे पास है ही नहीं वो जो आप दे रहे हो। वो है यहाँ का भाव जो ये ब्रजवासियों के अंदर, और इनको जो प्रसन्न करता है ना सेवा से, किसी भी माध्यम से, राधा और कृष्ण आपके हो जाते हैं। जैसे आपका अभी बहुत सारे गृहस्थी बैठे हैं यहाँ पर, आपके बच्चे हैं, आपको प्रसन्न करने का इजिएस्ट तरीका क्या है? आपके बेटे को खुश करना, किसी चीज से आपको टॉफी दो, चुम्मा लो उसका, या उसको बहलाओ, या उसको हंसाओ, खुश करो, उसको देख के आप खुश हो जाएंगे। आपको कुछ दे या मत दो, या आपके बालक को, अमेरिका में कहते हैं कुत्ता, वो तो बहुत एडवांस सिटी है ना, हमारे जैसा नहीं। उसके कुत्ते को जाकर प्रेम करेंगे ना, चुम्मा, ओ सो स्वीट टॉमी, वंडरफुल, तो मालिक खुश। वैसे राधा रानी के भक्तों की कोई सेवा करेगा और उनको सही में हृदय से प्रसन्न करेगा तो राधा रानी की कृपा आपको उसी दिन हो जाती है। ब्रजवासी आचार्य बताते हैं जिस दिन आप ब्रजवासी को प्रसन्न करते हैं उसी दिन राधा रानी कृष्ण को आपका नाम रिकमेंड करती है कि ये भक्त है इस पर कृपा करो आप। और राधा रानी का कहना कृष्ण मान नहीं सकते, टाल नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। राधा रानी किसकी सिफारिश करती है तो कृष्ण उसको मना नहीं कर सकते। वो खुद जाके पुकारेगा तो कृष्ण देखेंगे भी नहीं उसको, राधा रानी के चैनल से आएगा ना कुछ नहीं कर सकते वो, ऐसा ही बरसाना था। इसलिए हम लोग बरसाने में आए कैंप लगाते, क्योंकि वहां पर बहुत लोग अंधे होते हैं। क्यों? से बाल सफेद होते ना, जैसे आंख में मोतिया होता है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं काम नहीं, लेकिन एक बुढ़ापे का लक्षण है वो। 50-60 हो गए तो फिर मोतीबिंद आना शुरू होता है। अभी वहां पर साधन ही नहीं कुछ, इतना श्रेष्ठ जगह है, कृष्ण भगवान की दृष्टि से सर्वोच्च जगह है, वहां जमीन पर लोटपोट होने के लिए वहां पर आते हैं, इतना महान जगह है। लेकिन आज की स्थिति में एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, बाह्य दृष्टि से एकदम ऐसी जगह है कि जहां पर कुछ फैसिलिटी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं ढंग का, कोई डॉक्टर कोई नहीं है ऐसा कि आपका इलाज कर सके। लोग ना अंधा होना पसंद करते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है मथुरा जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, या कोई इलाज का ढंग तरीका नहीं है, या मशीन नहीं है, कुछ है ही नहीं उधर, कोई आता ही नहीं उधर। डिलीवरी के लिए 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग करना पड़ता है उनको, क्योंकि पहला हॉस्पिटल डिलीवरी का कोशी में है, 25 किलोमीटर दूर बोलो। तो हम लोग वृंदावन में भी खोल सकते थे, वृंदावन में हमारा हॉस्पिटल है, लेकिन बरसाने में क्यों खोला है? क्योंकि जो लोग वहां से हिल नहीं सकते हैं, उनके पास पैसे ही नहीं मथुरा जाने के लिए, और डर लगता है उनको, जैसे हमारे गांव के लोगों को मुंबई आने में, भाग रहे मुंबई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी गाड़ियां, ट्रैफिक, और एकदम ऐसा दे गेट कल्चरल शॉक। वैसे उन लोगों को अपने गांव से मथुरा जाने के लगता है, क्योंकि मथुरा उनके लिए बहुत क्राउडेड और बहुत सारा कंस की नगरी, ये सोचते हैं कि कंस की नगरी कौन जाएगा। इसलिए हम लोग वहां जाकर उनकी सेवा करते, और अभी बहुत भाग्य की बात है, एक तो बरसाने का परिचय हुआ हमारे गुरुदेव की वजह से, उसके बाद में उनके कृपा से सेवा मिला उधर का। अभी वो 35 साल हो गए, जवान के बुढ़े हो गए, तो शुरू किया था। पहले पहला कैंप लगाया, ऐसे बात बात में आप कौन हो, बोले आई सर्जन है, आप कौन हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आप कौन है, ये जनरल फिजिशियन है, आप कौन है, ये ऐसे ऐसे बातें हुई। और क्या करते हो, हम लोग मुंबई में कैंप लगाते, और यहाँ लगाओ ना कैंप, यहाँ पर कितने लोग अंधे हो रहे हैं, महाराज को दिखा रहे तो वो दूर है यहाँ पे जगह, मतलब मुंबई में हमारा तो पालघर ये जगह ना, पालघर हमारा इधर कैंप लगाते थे हम लोग पहले, ये हमारा प्रथम कर्मभूमि है ये डिस्ट्रिक्ट जो है ना, हम लोग ईस्ट में आए, उधर जाएंगे वेस्ट में तो पालघर जिला है पूरा, उधर हमारा हमने सेवा शुरू किया था 86 में, तो उधर तो बहुत पास में है, इधर तक सब सेटिंग करना कोई व्यवस्था नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, क्या करेंगे, तो महाराज ने ऐसा क्या करना है, क्योंकि हमारे महाराज जी का जो जीवन का सबसे मूल्यवान साक्षात्कार था भक्ति के जीवन का, वो उनको बरसाने में प्राप्त हुआ। हम लोगों ने पढ़ा है अनोखा सफर, जर्नी होम, पहलू पार हो, प्रवास, कितने लोगों ने पढ़ा है, राधानाथ महाराज जी का जीवनी ऐसा ना एक 8 घंटे का थ्रिलर मूवी बन सकता है उसके ऊपर, ऐसा खतरनाक किताब है, एक एक बात एक एक घटना ऐसी घटते रहती है ना कि आपको, कई लोगों ने ऐसा किताब पढ़ा है वो रात भर पढ़ के सुबह उल्टियां हो रही है उनको, क्यों, रात को सोए नहीं, हो निद्रा नाश हो गया ना, तो धनाधन उल्टियां कर रहे हैं, तो क्या हो गया, तो फिल्म बनने का बनेगा प्रभु जी, वो चल रहा है उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर फिल्म बनना इतना आसान काम नहीं है, उसमें एक एक कहानी एक एक फिल्म के योग्य है, ऐसे कई कहानियां उसके अंदर कई फिल्में बन सकती है। एनीवेज तो उसमें एक चीज ऐसी है कि वो भगवान को ढूंढते 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 तो संतों को मिलते 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 उनको क्लू मिला के उनको बरसाने जाना है, तो मान मंदिर जाके रहे थे वो 6 महीने, और सारे जीवन के जो चॉइसेस साक्षात्कार है, हाँ, मोस्ट वैल्यूएबल रियलाइजेशन उनको उधर हुए। जब वहां से निकले तो मन में उन्होंने एक विचार किया था कि मैं ना इस जगह के लिए कुछ करूंगा, कुछ करना चाहता हूँ, तब तो वो ऐसे ऐसे अननोन साधु थे एकदम छोटे से। तो जब ये बात निकली ना, हम लोग 86 में महाराज को लेकर गए थे वहां पर, महाराज उनको लेकर गए थे, तो ऐसे बैठे बैठे विद्वासियों से बात कर रहे हैं, तो बातों में कैंप फिक्स होगा, बोलो फिर कहाँ रहेंगे, आकर हमारे घर पे रहो, कहते इमेजिन 68 लोग 68 पीपल उनके घर में रहे, वी कैनॉट इमेजिन ऑल्सो, आपका बहुत बड़ा बंगला होगा ना तो भी आप 68 लोगों को होस्ट करने में सोच सकते कभी भी, अच्छा 4-5 हज़ार आ जाओ ठीक है, 68 लोग औरतें आदमी सबको अलग से उनके घर पे रहे, टाट के घर बनाए हमने, टाट के वॉल्स, टाट के बाथरूम, सब टाट के बनाए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गनी सैक, गुणपाट मराठी में बोलते हैं, वो टाट हो ना बोरी होती ना, बोरी चावल गेहूं की वगैरह, वो बोरी की हमने ऐसे दरवाजे और ये टॉयलेट वगैरह बनाए उनके घर पे, सबको रात में मैया दूध पिलाती थी, ब्रजवासी मैया उनके घर पे सबको दूध पिला के, कड़ी ठंड हुआ करती थी, वो कड़ी ठंड के अंदर पानी ना गर्म होने के लिए बहुत टाइम लगता था, तो रात को 12 बजे चूल्हे पे चढ़ा देते पानी, ताकि सुबह वो खोलता हुआ 3 बजे या 4 बजे मिलेगा आपको, सब लोगों को 5 बजे ड्यूटी पर जाना है ऑपरेशन करने के लिए, तो ये दूध पिला के भगवे भगवना में पानी रख के वो सोती थी, और सबसे पहले उठकर सबको पानी दे देती स्नान करने के लिए, बोलो फिर देखती थी कि सब कंबल नहीं मिला है तो कंबल देना, किसी को कुछ चाहिए नहीं चाहिए, सब देखकर दिन रात वो हमारी सेवा करती थी। 68 पीपल, सबको खाना पीना भी उनके घर पे, उनको जाने के लिए व्हीकल, जाना आना सब कुछ करते थे, तो वहां से शुरू हुआ था ये कैंप, तो एनुअली करते थे, तो नंबर पूरा नहीं होता था, प्रभु जी हमारा रह गया अभी अगले साल आएंगे, अभी क्या हमारा कब होगा, फिर महीने में शुरू किया, हर महीने में शुरू किया, फिर वो भी बोलते अभी हर महीने में पूरा नहीं हो रहा है, तो हमारे डॉक्टर लोग है ना मुंबई वाले, भक्ति विधान को बोला हम भी जा रहे हैं बरसाने, टॉप डॉक्टर्स, हाँ हाईली अर्निंग टॉप डॉक्टर्स कपल और कुछ उनका प्रेरणा से टेक्नीशियंस बरसाने शिफ्ट हो गए, और वहां पर अभी किराए पे जब हॉस्पिटल चल रहा है, फिर 2005 से हमने बहुत कोशिश किया, रही अपनी जगह होनी चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे, सिरम का आर्ट बनाएंगे, 2005 में कोशिश शुरू किया मैंने, वो जगह के चक्र में पूरा बरसाना नंदगांव छान मारा हुआ चप्पा चप्पा, उसके बाद में फिर भगवान के असीम कृपा से 2012 में 5 एकड़ जमीन आई, बहुत मेहनत किया उसके लिए, और 2012 से जमीन पड़ी हुई है, क्योंकि फ्री सेवा कर रहे हैं वहाँ पर, साल के 3,000 ऑपरेशन कर रहे हैं, वो भी फ्री में है तो उसका भी फंड रेजिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमेशा डेफिसिट है उसके अंदर, तो फिर उधर बनाने के लिए कहाँ से पैसा लेंगे। इसलिए वो अभी 10 साल होंगे, 10 ईयर्स विल बी ओवर, जगह पड़ी है, डोनर भी पूछ रहे क्या हो रहा है जगह। तभी हमने आज का मीटिंग है ना, वही रहस्य की बात है, आज हमारा मैराथन मीटिंग हुआ कि उसको 15 नवंबर को भूमि पूजन करना है और कंस्ट्रक्शन चालू करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर स्पेशली आए थे उसके कंसर्न लोग, और आज सुबह से लेकर शाम तक हमने पूरा 28 पॉइंट थे एजेंडा के, वो सब हमने आज कवर किए और सब प्लानिंग बनाया, स्ट्रैटेजी अस्पताल बनाना है। क्यों बनाना है अस्पताल? अभी मैंने वहाँ पर खुद 30 साल सेवा किया, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। अस्पताल क्यों बनाना है? नंबर वन, वहाँ के वृद्धवासियों को परमानेंट एक हाई क्लास सेवा जो है ना, क्वालिटी सर्विस वो मिलनी चाहिए, नॉट लाइक चालू सर्विस, ऑपरेशन किया तो इन्फेक्शन हो गया, आँख ही चली गई, इसके बाद ऐसे होता है, बहुत सारे किस्से हो गए। क्वालिटी सर्विस वो मुंबई में देते हैं हमारे पेड पेशेंट को, उनको फ्री में देना चाहिए, नंबर वन, और वो चलते रहना चाहिए। और हमने सेवा किया है, अरे हमारे बच्चों को सेवा कब मिलेगा उधर? उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ना, सेवा करने के लिए कुछ साधन चाहिए ना, कोई ऐसा कुछ व्यवस्था चाहिए ताकि वो सेवा कर सके। हमारी 4 हो 5 हो 10 पीढ़ियाँ हमारी 100 साल तक वहाँ पर सेवा करते रहेंगे, उनको वृद्धवास से उनका आशीर्वाद मिलते रहेगा, राधा रानी का कृपा मिलता रहेगा, भक्ति कृष्ण के चरणों में प्राप्त होगी, इसके लिए बना रहे वो। बाह्य कारण है उनके नेत्र दृष्टि देने के लिए, अंतर्गत कारण है कि सब लोगों को कृपा राधा रानी के प्राप्त हो, कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, ऐसा है। और हमको ये विश्वास है इस बात पर कि ये अस्पताल जो है ना वो भक्त लोग ही बनाएंगे, क्योंकि बाहर का आदमी जो शराबी है, कुछ करप्ट आदमी है, वो आपको ब्लैक मनी लाके देगा, इससे वो अस्पताल नहीं बनेगा, क्योंकि अस्पताल सबसे सर्वोत्तम शुद्ध जगह पर बन रहे हैं। उसके लिए जो शुद्ध जीवन जी रहे हैं, जो उनकी कमाई भी बहुत प्रामाणिक है, नेक कमाई करते हैं वो, है ना, श्रम की कमाई है उनकी, मेहनत की कमाई है, उन्हीं के प्रेम की कमाई से वो बनेगा राधा रानी के चरणों में। बाकी राधा रानी को क्या जरूरत है हमारी सेवा की? हमको जरूरत है उनकी सेवा करने की, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं। भगवान को जरूरत नहीं हमारी सेवा की, हमको जरूरत है उनकी सेवा करने की। इसलिए हमारा तो भाग्य इतना था कि हमको एकदम कच्ची उम्र में ही सब कुछ ये प्राप्त हो गया, और पूरा जीवन हमारा उसको चला गया उसी ध्यान में कि जाना है, साल भर उसके लिए प्रयत्न करना। अभी बाद में अभी डेली हो गया, डेली हॉस्पिटल हो गया। प्रभु जी अभी कितने साल हो गए? 2006 में शुरू किया था डेली हॉस्पिटल, दूसरे के दिन 6 अक्टूबर, अभी 2021 हो गया। तो ये कृपा है बहुत बड़ी। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक तो धाम की महिमा, धाम के रज की महिमा, धाम के भक्तों की महिमा, और धाम के भक्तों की सेवा की महिमा। क्योंकि तो जो सेवा करता है ना, उससे भगवान बन जाते हैं, आप नहीं बनते उनसे, भगवान खुद बन जाते हैं उससे। तो सेवा करता है उसके भगवान, चाकर है त्रिभुवन पति, त्रिभुवन पति है उनके, चाकर बन जाते हैं जो उनकी वो सेवा करते हैं, अपने प्रियतमों की सेवा करते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धाम में जाना आना, दर्शन करना, कथा सुनना बहुत अच्छी बात है, वो एक स्तर पर है, लेकिन वहां की सेवा प्राप्त होना दूसरी चीज है। पर वहां पर सेवा प्राप्त होकर प्रसन्नता उनके प्राप्त होना, जो उसके अंदर की ओर गहराई है। और कहते हैं, ब्रजरस ब्रजवासी ही जाने, काऊ समझे ना आए, और किसी को समझ में नहीं आ सकता है। जो ब्रजवासी को प्रसन्न करता है उसी को ब्रजरस प्राप्त होता है। भक्ति के अंदर भी बहुत लेवल्स है, एक है ब्रज उपासना, ब्रज का प्रेम, ब्रज की महिमा, ब्रज का जो प्रेम है ना, ब्रजरस, वो अलग चीज है, वो हम लोग फिलोसफी पढ़कर नहीं सुन सकते। उसके लिए सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो ब्रज का जो प्रेम है, जो उनके हृदय में है, उसको आप छू सकते हो, उसकी पहचान कर सकते हो। तो ये भाग्य गुरु जी की कृपा से प्राप्त है, और आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई प्रश्न होगा किसी का तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
Thank you.